इसलिए फरमाया कैसे लोग अपने आप को अल्लाह ताला से दूर करवा लेते हैं ऐसी बातें कर कर आके, और ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर जिंदा करके ना उठाएगा। उठाएगा क्यों नहीं, ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना इसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, मगर अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर नहीं जानते। मैंने चंद दिन पहले एक छोटा सा दर्स इसी पे दिया था, अक्सरियत पे। एक शख्स था तो बैठा हुआ दुआ कर रहा था, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर ले, थोड़ों में कर ले। हजरत उमर ने कहा क्यों भाई, तो उसने कहा कि देखो कुरान में कोई बात भी तो ऐसी नहीं है कि जिस पे ये किया हो कि अक्सर लोग ये करते हैं। यही कहा कलील मिन इबादी शुकुर, थोड़े ही शुक्र करते हैं, थोड़े ही इखलास वाले हैं, थोड़े ही सब्र वाले हैं, और अक्सरियत के जाहिल फासिक और इस तरह के काम करते हैं। तो कभी ना कहिए कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी, बल्कि ये कहिए कि अल्लाह तू मुझे थोड़ों में कर ले, इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। और अल्लाह सुबहान तला कहते हैं, और ऐसा होना इसलिए भी जरूरी है कि अल्लाह इनके सामने इस हकीकत को खोल के रख दे कि जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं और मुनकरीन हक को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे। रहा इसका इम्कान, तो हमें किसी चीज को वजूद में लाने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता कि हम इसे हुक्म दें हो जा, बस वो हो जाती है। हाईलाइट करिए इस आयत को, इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह तो कुन और फयकून का मालिक है। सोचिए जरा इस वक्त अपनी कोई बात, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, कोई तकलीफ सोचे अपने जहन में, बीमारी तकलीफ दुख, फिर अल्लाह से कहिए कि अल्लाह तू तो कुन फयकून का मालिक है, मेरी ये बीमारी दूर कर दे। अल्लाह तू तो कुन कहता है तो बिगड़े हुए काम बदल जाते हैं। अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे, मेरे माँ बाप पर रहम कर दे, मेरे भाई बहनों पर रहम कर दे। यकीन करें जब आप अल्लाह ताला से इतना लाइवली ताल्लुक रखेंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह ने आपको हिदायत की दौलत दे दी है, और अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसे ही मामला करे। इसके बाद हिजरत की बातें, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादी मा सुलिमो, जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए, इनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश जान लें वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया और जो अपने रब के भरोसे पे काम कर रहे हैं कि कैसा अच्छा इंजाम इनका मुंतजर है। हिजरत की बात है, देखिए हिजरत बहुत मुश्किल होती है। जो ही एक इंसान अपने माहौल को छोड़ता है उसको अजनबियत लगती है। आप किसी भी लड़की के शादी के शुरू के दिन देखें, अक्सर लड़कियां अपसेट होती हैं, अक्सर अपसेट होती हैं, और सब्र और बर्दाश्त ना हो तो अक्सर घर टूट जाते हैं शुरू में। हिजरत होती है। आपका घर कच्चा घर भी हो ना, मिट्टी का भी बना, आप उसके भी यूज्ड होते हैं। आप वहां से निकलकर एक महल नुमा घर में भेज दिए जाए ना, आप वहां भी दुखी होंगे क्योंकि तब्दीली पसंद नहीं होती। अब यहां जिस हिजरत की बात है वो क्या है, मन पसंद लव स्टाइल, अपनी मर्जी से जीते थे, अपनी मर्जी से उठते थे, जब जो चाहा खाया, जब जिधर चाहा गए, पहनना ओढ़ा, कोई हमसे पूछने वाला नहीं था। जब कुरान खोला बहुत कुछ दिखा, अब एक एक चीज छूटने लगी। तो ये छूटने का सफर बड़ा मुश्किल है, सेटल डाउन होने दें। अगर आप अपने घर में किसी को देख रही हैं, अपनी दोस्तों में किसी को नया नया दीन पे आ रही है, तो कभी ये ताना ना दे, लो तुम तो अभी नहीं पूरी बदली, अभी भी ये चीज तुम में, अब कुरान पढ़ के भी ये नहीं छोड़ा, मत ताने दे। क्यों, इन तानों से उनका दिल टूटेगा। बहुत कुछ छोड़ के आते हैं लोग, आपको क्या पता जब एक बंदा अपनी मन पसंद सरगर्मियों को छोड़ता है तो अंदर कितने आंसू गिरते हैं। कभी आपने अपनी बच्ची को उसकी दोस्त से जुदा किया हो बचपन में कि तुम इसके घर नहीं जान सकती, तो आप देखिए कि वहां वो कितना फुट फुट के रोती है। इसी तरह माहौल से, लोगों से, चीजों से हमारी उनसियत हो चुकी थी। कई साथी हमसे ये चीजें डिस्कस करते हैं, सुबह उठते थे जब बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद निकलते थे, किधर जा रहे, शॉपिंग करने, क्या रोज चेंज नहीं, आदत थी उस मॉल में। और घर में वो क्यूपन आ जाते हैं और वो बुकलेट्स और कैटलॉग्स आती हैं, उधर मारे मारे फिरते थे, फिर ना चाहे वो ये नहीं भी पसंद था फिर भी कई चीजें ले आए, अब ये क्रेविंग थी। और जब आप जाएंगे तो आपके कानों में भी कुछ पड़ेगा, आपकी आंखें भी कुछ देखेंगी, बस उससे दिल में अरमान और जज्बे पैदा हुए, और वो चीज जो लेने गए वो तो भूल ही गई, याद ही नहीं रहा, जाके कहते लेने के आई थी, और क्या लेके आ गए, जो सेल पे लगा हुआ था, बाय वन गेट टू फ्री था, या टू वन बाय वन गेट फ्री था, सिर्फ इसलिए कि फ्री है, अच्छा अब क्या हुआ, लेके आ गए, फिर आके घर में खुश होते हैं थोड़ी देर के लिए, देखो लूट लिया आज तो मैंने दुकानदार को, तो फिर लूटना तो बड़ी बुरी बात है, आप क्यों लूट के आ गई, बेवकूफ बना दिया आज उसको, तो बेवकूफ बनाना तो बड़ी बुरी बात होती है। हाँ याद रखिए कि इंसान दुनिया में इस तरह अपने आप को पागल बनाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप खुद फील करेंगे, आप घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा आपके साथ, डोंट वरी, लेकिन जिंदगी में सुकून जरूर आएगा। एक एक करके आपकी घर की अलमारी अब साफ होती जाएगी, दिल की अलमारियां भी साफ होंगी, किचन की भी, ड्राइंग रूम की भी, इधर की भी, उधर की भी, और ऐसे वक्त में जो सब्र कर गया वो बच जाएगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरा दिल बदल दे, जहां मैंने दुनिया सजाई हुई थी वहां आखिरत सजाऊं, दुनिया को जन्नत बनाती थी अब आखिरत को जन्नत बनाओ, आप देखेंगे दुनिया में इंशाल्लाह फायदा होगा। और हर वो चीज बदल लें जिससे आपको कोई बू आती है, किस चीज की, गुनाहों की, नाफरमानियों की, कपड़ों से हिजरत करनी पड़ती है, खानों से हिजरत करनी पड़ती है, इलाकों से हिजरत करनी पड़ती है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये सुन सुन कर इंसान को इतना खौफ आता है, तो कहा जू ही वो अलग होता है वो तनहा होता है, हिजरत और तनहाई अलग अलग है। मैंने शायद पहले बताया था मोहम्मद असद एक ज्यू थे, 19वीं सेंचुरी के शुरू में मुस्लिम हुए थे, तो चूंकि ज्यूज बहुत कम इस्लाम पे आते हैं तो उनके खानदान में कोई था ही नहीं दूर दूर तक जो इस्लाम पे होता, तो वो लिखते हैं कि लोनली नाइट्स, हिजरत और तन्हाई साथ साथ, ऐसे ही होता है। सारी दोस्तों को बुला लिया मेहंदी पे, मुझे बुलाया ही नहीं, सारी आज उधर पार्टी खा रही है मुझे बुलाया ही नहीं, उधर तो ये चल रहा है क्योंकि आप जाएंगे तो आप तो उनके रंग में भंग डालेंगे, कल तक आपके बगैर रस्म नहीं होती थी, आपके बगैर फंक्शन नहीं होता था, अब आपको लोगों से पता चलता है कि कल रात वहां ये हो गया, अब आप घुट घुट के रोते हैं, फिर आप कहते हाय मेरा ग्लैमर खत्म हो गया, हाय मैं तन्हा रह गई। अच्छा भले आप चल रहे होते हैं आपके कदम, लेकिन फौरन ही होगा पता क्या, शैतान आपके दिल में डालेगा आइसोलेटेड हो गई हो, फिर बच्चियों के रिश्ते कैसे होंगे, मेरे बेटे को लड़की कौन देगा, बस ये बैक ट्रैक शुरू होता है। जब ऐसा हो तो इस आयत को याद कर लें, अल्लज़ीन सबरू वाला रब्बिहिम यतवक्कलू, जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा सबर के साथ अल्लाह उसके कामों को बना देगा। वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन, ए नबी हमने आपसे पहले जब कभी रसूल भेजे आदमी ही भेजे, जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे, अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते, पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा, और अब ये जिक्र तुम पर नाजिल किया गया ताकि तुम लोगों के सामने इस तालीम की तशरीह व तौजीह करते जाओ जो इनके लिए उतारी गई, और ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। अल्लाह हमें भी इस पे गौर व फिक्र करने की तौफीक दे। आयत नंबर 40 से मिलके पढ़ेंगे जरा ऊंची आवाज से, और इंशाल्लाह ताला हम आयत नंबर 40 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे, चूंकि यहाँ एक सजदा आ रहा है तो आप सबको मैं थोड़ा सा पहले से आगाह कर दूं, 40-50 तक हम तिलावत पर सुनेंगे, उसके बाद तिलावत बंद कर दी जाएगी, ठीक है। और इत्तफाक से आप सब जैसे बैठे हैं यही किबला रुख है, थोड़ा सा रुख पलटना होता है तो अपनी अपनी जगह से झुक के सजदा कर लीजिएगा, है तो सजदे की आयत, और आप में से किसी का वजू है नहीं है किसी भी हालत में इवन, तो सजदा करते में कोई हर्ज नहीं है, और अगर दुआ आती हो तो सजदा वजही या लिल्लज़ी खलक़हु वसव्वरहु वशक्का समाहु वबसरहु बिहौलिहि वकुव्वतिहि। अब ये लंबी लगे तो सुभान रब्बी अला अलैहि पढ़ ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चलिए शुरू करते हैं, औज़बिल्लाह पढ़ते हैं।
Well, سجدہ سجدہ
جی آن لائن والے بھی سجدہ کر لیں. تھوڑے فریش ہو گئے؟ بلڈ بھی تو جاتا ہے نا سر میں. لیکن حقیقت ہے کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہی کہ ڈرون میں تو ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بھی اسی حصہ بن گئے. مجھے تو نہیں فرق پتہ لگتا, لیکن مجھے شاید لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نیند آتی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ کتنوں کو سنتے ہوئے نیند آتی ہے؟ اپنے سونے جاگنے کو اچھا رکھے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کہیں وقت ملے نا تو اس میں سو جائیں, گاڑی چلانے کے سوا. پتا چلا کہ گاڑی چلانے کے دوران آپ سو گئے اور بعد میں کہ جی ہمیں تمہاری ٹیچر نے کہا تھا, تو پھر نتائج کی ذمہ داری آپ کے اپنے اوپر ہے. آیت نمبر 45 سے, اف امین الذین مکروا السیئات یخسف اللہ بہم الارض. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بد سے بدتر چالیں چل رہے ہیں. سوچیے کون ہے جو اللہ کے نبی کے خلاف چالے چل رہے ہیں, اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو, اور اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا ایسی حالت میں ان کو پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. کیا پتہ چلا کہ رسول کی مخالفت چھوڑ دو. اس آیت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے. چلتے پھرتے اللہ اٹھاتے ہوئے پھینکتا ہے. اس پہ کلپ بھی ہے کہ شادی کا ایک فنکشن ہے اور سب لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور اتنے میں وہ جو ڈانسنگ فلور ہے وہ گرتا ہے اور سب زمین میں دھس جاتے ہیں, اور پھر وہیں جہاں ابھی تک ہائے مستی ہو رہا تھا وہاں پہ چیخو پکار پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہو جو ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچائے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی بھی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا ہے. سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں, یعنی ہمارے سائے جو زمین پہ پڑتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر عاجزی کا احساس رکھتے ہیں. زمین و آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ, سب کے سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. وہ ہر کی سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں. سوچیے فرشتے آسمانوں پہ اللہ سے ڈرے اور ہم دنیا میں گناہ کرتے ہوئے اللہ سے نہ ڈرے. کوئی خوشی پوری ہوتی نہیں جب تک انسان اللہ کے آگے اکڑی نہ جائے. اللہ اکبر. اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. خود سے پوچھیے کیا مجھے جس بات کا حکم دیا گیا میں وہ کرتی ہوں؟ کیا اللہ کے احکامات کو مانتی ہوں؟ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو, خدا تو بس ایک ہی ہے, بس مجھ ہی سے ڈرو. اسی کا ہے جو کچھ سب آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے ڈرو گے؟ سوچیے سب کچھ اس کا ہے. کیا اللہ کی بڑائی کا دل میں احساس ہوتا ہے؟ جو کسی کی چیزوں کو دیکھ کر ہوتے ہائے یہ بھی آپ کا, اچھا یہ بھی آپ کا, وہ سٹور بھی آپ کا, یہ بنگلہ یہ گھر بھی آپ کا. کیسے مروب ہوتے ہیں لوگوں کی چیزوں سے, مٹی کی چیزوں سے آپ مروب ہو گئے. اللہ سے نہیں مروب ہوتے جس کی کائنات کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں. تم کو جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ کی طرف سے, اس کو ہائی لائٹ کریں. وما بکم من نعمت فمن اللہ, وما بکم من نعمت فمن اللہ, وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو نعمت تم کو حاصل اللہ کی طرف سے, تو کیا کیا جائے پھر ان نعمتوں کے ساتھ؟ اللہ کو راضی کیا جائے, اس کا شکر ادا کیا جائے. کوئی اور دیتا تو پھر چلو اس کی مانتے, پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं, इनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। मुशरिकीन मक्का की रस्मों का जिक्र है। खुदा की कसम जरूर तुमसे पूछा जाएगा ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे। ये अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, सुबहान अल्लाह, इनके लिए वो जो ये चाहें। और जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो इनके चेहरों पर स्याही छा जाती है और वो बस खून का घूंट पीकर रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद फिर क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये अल्लाह के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफात से मुत्तसिफ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो इसके लिए सबसे बरतर सिफात हैं, वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है। यहाँ पहली दफा ये बात आई है, आगे भी आएगी एक जगह, तो समझ लीजिए कि मक्का वालों में बेटियों को आर समझते थे। औलाद का जो कत्ल होता था उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती थी कि अगर पैदा होने वाली बच्ची होती तो उसको मार देते। क्या वजह थी? एक तो गैरत की हद से बड़ी हुई कैफियत कि जी बेटी का बाप होना गैरत होने वाली बात है। कोई कहता हमारे दरवाजे पे दामाद आएगा, कोई कुछ कहता, ऐसी मनपसंद बातें थी और बेटी का ना होना उनको अच्छा लगता था। अब होता क्या कि कुछ कबाइल क्या थे कि जब किसी की औरत डिलीवरी पे होती तो उससे पहले ही एक घड़ा खोद लेते जमीन में। इमेजिन कीजिए, क्योंकि उस वक्त अभी तक अल्ट्रासाउंड की चीजें तो आई नहीं थी, ताकि वो लोगों को पहले से उसकी तैयारी करा देते। जो ही पैदा होने वाली बच्ची होती तो बस वो सांस लेती चंद, और उसके बाद उसको पकड़कर मां के पेट की कब्र से निकालकर जिंदा मट्टी में दफन कर देते। फिर इसी तरह से वो चीखती चिल्लाती रोती भी मर जाती। कुछ लोग क्या करते कि बेटी को 3-4 साल की उम्र तक होने देते। जब 7 चलने फिरने की उम्र की हो जाती ना, फिर उसको बहाने से जंगल में ले जाते। वो सहाबी का वाकया आपने सुना होगा, बैठे बैठे बेहोश हो जाते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या बात है? कहा अल्लाह के नबी मुझे अपनी एक बच्ची की चीखें याद आ जाती हैं कि जो मेरे साथ चलने फिरने की उम्र को हुई, फिर मैं इस नियत से घर से निकला कि आज तो इसको जंगल में जाके दफन कर ही दूंगा। फिर वो बच्ची भी मेरे साथ थी। अब्बा हम किधर जा रहे हैं? बड़ी खुश थी कि अब्बा सैर करा रहे हैं, और उंगली पकड़ती बच्ची जब साथ गई, फिर मैंने वहां जाके उसके लिए गड़ा खोदा। वो बच्ची अपने हाथों से मट्टी खोद रही थी मेरे साथ, और उसके बाद जब गड़ा खुद गया तो मैंने उसमें उस बच्ची को धक्का दिया, और उसकी आखिरी आवाजें जो मेरे कान में पड़ती रही, अब्बा क्या कर रहे हो, अब्बा क्या कर रहे हो, और मैंने उस पर मिट्टी डाल दी यहां तक कि वो ठंडी हो गई। आपको मुझे ये हैरत की बात लगेगी, लेकिन याद रखिए खानदान की रस्में और रिवाज इतने ही जालिम होते हैं। जैसे इंसान अपनी बच्चियों को फिजिकली मार देता ना, इसी तरह बार दफा रस्म और रिवाज के नाम पे भी बच्चियां मारी जाती हैं। कल भी बच्चियां मारी जाती थी, आज भी मारी जाती हैं। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, इस पर डिटेल का वक्त नहीं है, लेकिन आप खुद भी गूगल पे जाके जरा नोट करके देखिए कि डोरी की वजह से कुछ और बच्चियों को जो जिबा किया जाता है, जला दिया जाता है, घर में आग लगी, आज भी बच्चियां वैसी जलाई जाती हैं। पैदा होते जलाने वाले मारने का क्या, अल्ट्रासाउंड करा लो। ऐसा ऐड लगा हुआ कहीं भी कि 500 खर्च कीजिए, 5 लाख बचा लीजिए, आज अल्ट्रासाउंड कराएं कल वो। और ऐसी ऐसी खबरें छपती है हमारे अपने मुल्कों के अखबारों में, कुछ खबरें कुछ की उसकी कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, लेकिन सिर्फ उसका मैं हिंट ही आपको दे सकती हूँ अभी कि उन्होंने कहा कि क्या बड़ी बात है। एक औरत ने कहा मैंने तो अपनी 3-4 बेटियां मार दी। कहा हो कैसे? कहती क्या किया, बस फीड नहीं कराया उसको, फिर रो रो के मर गई। कहने लगी एक बड़ी सख्ती 2 दिन तक रोती रही। एक माँ ने कहा वह कि कैसे मारा? कहा कैसे मारते हैं, कोई मुश्किल है, बस उसके मुंह पे तकिया दे दिया, दबा दिया। जी गांव में आज भी ऐसे गांव है कि पैदा होने के बाद बच्चियों को एक सॉल्यूशन पिलाते हैं, जहरीला होता है, जो ही वो उसके जिस्म में जाता है उसको छीलना शुरू कर देता है और अंदर कांटे पड़ते हैं और वो 1-2 दिन में घुल घल के खत्म। अल्लाह ताला कहते हैं अपनी औलाद को कत्ल ना करो, ये सरे बनी इसराइल की भी आयतें हैं, लेकिन आप देखिए कि आज जो एबॉर्शन के नाम पे जुल्म हो रहा है उसको सामने रख लीजिए। ये देखिए बच्चों को दफन किया हुआ है, ये बच्चा ट्रैश कैन में लेटा हुआ है, पैदा होते बच्चे को ट्रैश कैन में डाल देते हैं। नेक्स्ट करें जी, आप बोलते बोलती जाती।
ये देखिए कि मेथड्स यूज टू किल द बेबी, ये बच्चों को किल करने के मेथड्स है, और ये यूनिवर्सिटीज में सैंपल के तौर पे दे देते हैं
सॉल्यूशन में डाल के बच्चों को खत्म किया हुआ।
ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर 11 वीक अबॉर्शन है ये, और इसमें डायलेशन इसका मेथड होता है जिसमें कुछ इस तरह के टैबलेट्स या दवा दी जाती है जिसमें से बच्चा गल जाता है। दिस इज एट द एज ऑफ 12 to 20 वीक्स। देर आर अप्रोक्सीमेटली 46 मिलियन अबॉर्शन कंडक्टेड ईच ईयर और 20 मिलियन ऑफ देम ऑपरेट इलीगली। ये सारी इलीगल अबॉर्शन होते हैं unborn babies strictly वैक्सीन से दिया गया।
कितना दिल सख्त हो जाता है। और आप देखिए जो अपने बच्चों को खुद अबॉर्ट कराते हैं, ये देखिए बच्चे ने डॉक्टर की उंगली पकड़ी। 3-4 महीने का अगर आप औरत का अल्ट्रासाउंड करवाएं तो पूरा बच्चा अंदर मौजूद होता है।
और सबसे ज्यादा वर्स्ट मेथड सर पॉजिटिव है जिसमें सॉल दिया जाता है कि
सिरिंज के जरिए मां के पेट में एक जहरीला मादा डालते हैं तो उससे बच्चा जल के पेट में जल के राख हो जाता है। अब आप बताइए आप इसको क्या कहेंगे। और ये जरा रूल तो पढ़िए, कीप योर लॉस बियॉन्ड माई बॉडी। जो लोग इबॉर्शन के हक में नारे लगाते हैं वो कहते हैं अपने कानून अपने तक रखो, मैं आजाद हूं अपना इबॉर्शन कराने में। और जब क्यामत के दिन ये बच्चियां पूछेंगी, कुरान में आता है कि इनसे पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हें कि भी आई ये जम बिन कुतिलत। तो याद रखिए कि कल भी बच्चियां मरती थी आज भी हैं। और फिर जो जवान होने के बच्चियों को जहेज के नाम पे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। ऐसी ऐसी रिपोर्टें हैं कि जहेज में टीवी ना लाने पे औरत को जला दिया गया, किसी को कलर टीवी लाने पे कहा गया, किसी के ऊपर जुल्म और सितम किए जाते हैं। ये सारे फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं, आप देख लें। और इलीगल बच्चे को तो मरवाना दूर की बात है जब माँ और बाप अपने बच्चे को खुद मरवाएं। कई डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ इसलिए बच्चे की सेक्स नहीं बताते कि अगर फीमेल बता दी तो इस बच्चे को अबॉर्ट करा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, ऐसे माहौल से ऐसी चीजों से बचें। औरतों को इज्जत दिलवाई इस्लाम ने, औरतों ने खुद ही उस इज्जत को रख लिया। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। और ये वो चीजें हैं कि जिसके साथ इंसान को इस्लाम की कदर आती है। बहुत सारे लोग इस्लाम की कदर कर नहीं पाते, वजह क्या है कि ऐसे लोगों ने इस्लाम की वो बहार नहीं देखी। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचा के रखे। अब इस सारे तनाजुर को सामने रख के याद सुनिएगा, अगर कहीं अल्लाह लोगों को इनकी ज्यादती पर फौरन ही पकड़ लेता तो रुए जमीन पर कोई जीता हुआ शख्स न छोड़ता, लेकिन वो सबको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। फिर जब वक्त आ जाता है तो उससे एक घड़ी आगे और एक घड़ी पीछे नहीं होती। आज ये लोग अल्लाह के लिए वो चीजें तजवीज कर रहे हैं जो अपने लिए नापसंद करते हैं। मजे की बात है कि अपने लिए बेटियां पसंद नहीं करते थे और अल्लाह की बेटियां करार देते थे। किसको? फरिश्तों को। झूठ कहती है इनकी जुबान है कि इनके लिए भला ही भला है, इनके लिए तो एक ही चीज है और वो है दोजख की आग। जरूर ये सबसे पहले इसमें पहुंचाए जाएंगे। खुदा की कसम है नबी, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं और पहले भी यही होता रहा कि शैतान ने इनके बुरे करतूत इन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए। आज भी जब से ये वॉर्शन आम हुआ और ऐसी पिल्स आम हो गई जिसमें फैमिली प्लानिंग हो सके, तब से जिना आम हो गया। अब तो अनमेरिड और शादियों के बगैर रहने वालों और स्कूलों कॉलेजों में ऐसे कामों को आना, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं रह गई। इसको तो लीगल कर दिया गया, वो तो मुतालबे आ गए कि हमें ऐसी फैसिलिटीज दी जाएं कि जिसमें हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। सोचिए शैतान कैसे बुरे कामों को अच्छा करके दिखाता है। और रसूलों की बात मान कर न दी, वही शैतान आज इन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के मुस्तहिक बन के रहे। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की कि तुम इन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पढ़े हुए। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है। हाईलाइट कीजिएगा, किन के लिए? सबको नहीं। लिखाओ मियूमिनून, इन लोगों के लिए जो इसे मान ले। अब आप देखिए कुरान में ये बातें कौन पढ़ेगा जो कुरान को समझेगा। कितनी माएं जो अबॉर्ट करवाती हैं और फिर अपने बच्चों को मरवा देती हैं क्योंकि कुरान से दूर है। और जब साथी कुरान पढ़ते हैं फिर कई लोग अपना रोना के रोते हैं कि क्या हमारा गुनाह माफ हो जाए, हमने अपने बच्चे जाया कराए। मैं सोची इतना दिल सख्त हो जाता है इंसान का। अल्लाह ताला सब की पिछली खताओं को माफ करके कुरान की रहमत उसकी जिंदगी में डाल दे। تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یک یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس پہ ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے, اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں, کیا؟ یعنی خالص دودھ, جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. دودھ پیے کبھی؟ کہاں سے آتا ہے؟ کالی بھینس کے تھنوں میں سے. اس بھینس کے پیٹ میں چار طرح کی نالیاں, کئی طرح کا اس کا پیٹ ہے. اس میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے؟ گوبر بھی ہے, خون بھی ہے, پیشاب بھی ہے اور دودھ بھی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دودھ لیا بالکل فریش اور اس میں سے گوبر کی سمیل آ رہی ہو, پیشاب کا رنگ ہو, سمیل ہو, خون کی وجہ سے وہ پنک ہو گیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ کس نے ان پائپوں کے اندر ایسا انسولیشن ڈال دیا کہ صاف ستھرا دودھ آتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. اور جس نے رب کو پہچاننا اس کے لیے تو دودھ کا ایک گلاس بھی استاد ہے. یہ ہمارے استاد ہیں سب, گائے, بھینسے, بکریاں, شہد کی مکھیاں, یہ ہیں وہ آپ کے استاد جن سے آپ مل رہے ہیں. اگر عبرت لینی ہو تو ان سے ہی لے لیجئے. اللہ ناممکنات کو ممکن میں بدلنے والا اب آپ کے اور میرے سامنے شہد کی مکھی کی بات لاتا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی, دل میں ڈال دی, الہام کر دیا, کیا؟ کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی جاؤ. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں ایک نشانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. جی, یہ شہد کی مکھی کیا ہوتی ہے؟ قدرت کا شاہکار. شہد کی مکھی میں جتنا خوبصورت ٹیم ورک ہے اور جو شفا اور خیر وہ انسانیت کو دیتی ہے, اگر اللہ کی کتاب کو سننے والے بھی اسی ٹیم ورک پہ آ جائیں تو اتنی ہی خیر اس قرآن کے ساتھ بھی لوگوں کو دیا جائے. آپ دیکھیں, چھوٹی سی ہوتی ہے نا, لیکن چند فگرز اس کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں. دیکھیں, ایک پاؤنڈ شہد بنتا ہے. آپ کے گھر میں ایک پاؤنڈ کی بوٹل ہوگی, اکثر ہی گھروں میں ہوتی ہے الحمدللہ. 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے شہد کی مکھی, 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہے, یعنی لائک بیک اینڈ فورتھ آتے جاتے, 50,000 مائل کا سفر طے کرتی ہے, پولن کھاتی ہے. میل جو ہوتا ہے وہ صرف فرٹیلائزیشن کرواتا ہے, اور شہد کی مکھی کا سر سوئی کے سرے کے برابر ہوتا ہے. ابھی آپ دکھاتے ہیں. کناروں سے چھتا بنانا شروع کرتی ہے. ہیکساگونل ہوتا ہے, 6 کارنر ہوتے ہیں, جیسے آپ کریشیا بنتے ہیں نا, اس طرح سے یہ بنتی ہے. اور ان مکھیوں میں کئی قسم کی مکھیاں, ایک دربان مکھی ہوتی ہے جو کیڑوں کو اندر آنے نہیں دیتی, شہد کی حفاظت کرتی ہے, اپنے پروں سے پنکھے چھل کے شہد کو ٹھنڈا کرتی ہے. جو ہی وہ اس میں شہد ڈالے, ایک دوسری مکھی اس کے اوپر قطرے قطرے موم کے ڈالتی جاتی ہے, جس کے ساتھ وہ قطرے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. سیل پیک, ٹیٹرا پیک, کوئین مکھی ہوتی ہے جو سب سے یہ کام لیتی ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو بند کر کے.
یہ کوئین بھی ہوتی ہے جو سب سے, جیسے ابھی بتایا استاد نے کہ سب سے کام لیتی ہے, اور اکثر کوئینز کا ہی کام ہوتا ہے کہ سب سے کام لیتے ہیں. ہم بھی گھر کی کوئین ہوتی ہے تو ہم بھی کام لیتی ہیں زیادہ سے زیادہ. The mother of all the bees in the hive lays both unfertilized and fertilized eggs. یہاں پر دیکھیے کہ اس کا کلر کیا ہوتا ہے, نیکٹر کیا کرتی ہے, یہ ڈیزیز ایوری تھنگ یہاں پر رکھے ہیں. Sole purpose is to mate with the queen. یہ ڈرونز ہوتے ہیں جن کو, یہ میل بیز ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں بس, اور جو بھی کوئی بھی بتاتی ہے اسی کے حکم پہ یہ سارے لوگ چلتے ہیں. اینڈ آل دیز آر ورکر بیز, یہ سب ورکرس ہوتے ہیں جو جن کا کام ہوتا ہے کہ یہ کوم بنانا, اینڈ دین ریزنگ برڈ, یعنی جو ایگس اور لاروے ہوتے ہیں جو پیک کر دیے جاتے ہیں ان کو ہائیو کرنا, فرٹیلائز کرنا, اینڈ دین نیکٹر جمع کرنا یہ سارے باکسز میں. And the development of the queen bee is written here. A queen bee ki life span jo hai 2 to 5 years hoti hai. Worker bee is only 6 weeks, like ek samay samajhne aap, bas unka kaam hota hai ki apne bas wo uske baad apna kaam karke khatam ho jati hai, that's it. Lekin queen bee jo hoti hai wo hai 2 to 5 years ki life jeeti hai. And drone jo male bee hoti hai wo 8 weeks tak jeeti hai. She is what she eats. ये इसके बारे में
फूलों का रस करती, फूलों का रस पीती।
ये बहुत ब्यूटीफुल तफावत है उस ताज़ा, अगर आप एक्सप्लेन करें।
मुझे नजर नहीं आ रहा वैसे तो मैं करा। आप देखिए कि शहद की मक्खी की मिसाल क्यों दी, आप ये सोचे मोमिन से भी अल्लाह ताला यही चाहता है।
हनी बी एन बिलीवर, हनी बी लीव्स अ पर्पसफुल लाइफ एंड डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, वेयर एज अ मोमिन नोस योर नो योर पर्पस ऑफ लाइफ एंड बी फोकस अगेंस्ट अट्रैक्शन। चाहे जितनी भी अट्रैक्शन हो, बीज का यही काम होता है कि वो अपने मकसद पे फोकस होती है, वो शहद ही बनाती है, वो छोड़ नहीं देती अपने काम को। और एक मोमिन की भी जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए कि वो फोकस ना लूज करे अपने अपने काम से। ट्रेवल्स अ लॉट टू अचीव इट्स गोल्स, दैट इज हनी। एंड ए बिलीवर शुड बी ट्रेवलिंग अ लॉट टू अचीव अटेन द नॉलेज एंड स्ट्रेंथन इस्लाम, इस्लाम को मजबूत करना उसका मकसद होना चाहिए। वर्क्स फॉर द हनी बी वर्क्स फॉर द बेनिफिट टू द वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स सक्सेस, सेल्फलेसली प्रोड्यूसेस प्योर हनी ओनली। और एक मोमिन भी ऐसे ही होना चाहिए कि प्रोड्यूस गुड डीड्स विद टोटल प्योरिटी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, दैट इज विद इखलास। हेल्प अदर्स एंड डोंट बी सेल्फिश, वो सेल्फिश नहीं होता। और नो वन कैन डू माई जॉब, नन नो द आर्ट ऑफ मेकिंग हनी, जो उसका काम है ना वही करता है। तो एक मोमिन का काम यही है कि अल्लाह सुब्हान तआला के दीन को फैलाना और उसको उसके दीन के लिए सरबुलंदी के साथ जीना और उसको स्प्रेड करना, तो वो नहीं छोड़ता। और वो अपना काम जैसे कि हनी भी ही हनी बना सकती है ना, और कोई मखलूक इस तरह से नहीं है जो हनी बना सकती है, तो वो उसने अपना काम फोकस लूज नहीं किया। तो हमारा भी जो पर्पज ऑफ लाइफ है, हम वो ना भूलें उससे और हम उसी के ऊपर चलते रहें। दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या फरमाया कि आई क्रिएटेड द जिन एंड द ह्यूमन काइंड ओनली दैट दे माइट वर्शिप मी। और बेनिफिट्स ऑफ हनी क्या है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है। और एक प्रेजेंटेशन भी है हनी क्योर्स, जिसमें पूरे टोटल बेनिफिट्स दिए गए हैं, वो इंशाल्लाह आपको ईमेल में भेज देंगे।
आप देखिए क्या मोहम्मद है वसत के लिए पढ़ रहे हैं ना ये बारा। मेरा और आपका काम क्या कि हम हनी बी की तरह बामकसद हो जाएं। वो लोगों को शहद देना चाहती है जो कि शिफा है, तो कुरान में भी शिफा है, इस दीन में शिफा है। हमें भी उतने ही उड़ना है, उतना ही भागना है, उतना ही सफर करना है जितना शहद की मक्खी करती है। और एक शहद की मक्खी आपको तो सारी जिंदगी में कितना हनी बनाती है, हाफ टी स्पून। हम कहते हैं लोग ही नहीं आते, किसको बताएं, कोई फायदा ही नहीं है, छोड़ो दिल टूट गया, दिल खट्टा हो गया। हम तो शायद आधी टी स्पून तो सिंक में फेंक देते हैं हनी डालने के बाद। काम कीजिए, मेहनती बनना है, लोगों के लिए जीना है। अल्लाह का जो कलाम और अल्लाह का इतना खूबसूरत दीन अल्लाह ने हमें दिया, इसको लेकर चलेंगे फिर फायदा होगा। और आप यहां देखिए कि सारी एक्टिविटी और क्रिएटिविटी किसके पास है, फीमेल्स के पास है। कुछ सिस्टर्स ये शिकवा करती है हमारे मर्द साथ नहीं देते, मर्द कुछ नहीं करते। तो आप देख लीजिए फीमेल और मेल में क्या फर्क है, सारा काम फीमेल करती है तो मर्द कुछ नहीं करते। इस तरह के एक खास अल्लाह ने जो उनका काम दिया हुआ है, और आप देखें कि एक क्वीन और बाकी मलकाएं, यही है एक लीडर होता है, बाकी सब उसके साथ होते हैं। दिन में 5 बार जिस उम्मत को नमाजें पढ़ाकर इमाम को फॉलो करना सिखाया जाए, आज उस उम्मत का हाल देखिए कि किस तरह से वो डिसोबे करते हैं इन चीजों को। तो इसमें से लेसन आप खुद पिक करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और जितना ज्यादा आप इन चीजों को अपने ऊपर लेंगी, आपको लगेगा आपने ये प्रेजेंटेशन अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से शेयर करना है। और इस पे हल्की फुल्की बात करें कि अगर हमें वाकई बामकसद इंसान बनना है तो हमें भी अपने आप को हल्का फुल्का रखना पड़ेगा। और आपको होता है कि जब शहद की मक्खियां फूल से गुजर जाती है ना उसकी खुशबू लेके, तो आप बाकी भी उधर आ सकती हैं। इस पे बहुत कुछ है लेकिन अभी तो हम आपको चंक्स बता रहे हैं। तो जब एक फूल में से रस चूस के चली गई, समझ गए, तो अब बाकी भी उधर ही आएंगे, तो टाइम वेस्ट होगा ना। जैसे हमारा अक्सर ही होता है एक ही काम सारे कर रहे होते हैं, बाद में अरे आप पहले कर गई थी, मैं भी इधर ही आ गई। नहीं, एक मक्खी जो ही किसी फूल में से खुशबू ले जाती है ना, तो वहां एक खास किस्म का स्प्रे छोड़ाती है, दूसरी सब मक्खियों को उस खुशबू से पता चलता है कि इधर आने की कोई जरूरत नहीं है, इन फूलों का रस चूस चुके हैं। काम करें, वर्क कम तरीके से, प्लानिंग मैनेजमेंट किस तरह इन घरों को बनाती हैं और किस तरह छज्जों पे जाके, दरख्तों पे, जंगलों पे, पहाड़ों पे अल्लाह ताला। फिर आगे फरमाया और देखो अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद कुछ ना जाने। हाईलाइट करें इसको, मेरे रैप पे वो उम्र आने वाली है, चाहे 10 20 25 30 साल में आ जाए या कुछ सालों में आ जाए. और वो क्या केला रसलिल उमरि लिकैला यालम बाद इल्मिन शैया. आज इंसान इतना बड़ा बनता है, बोलता है तो बोलता ही जाता है, हो सकता है एक दूध का ग्लास मांगने में घंटा लग जाए. बुढ़ापा बहुत बड़ी बीमारी है. एक वक्त आता है इंसान किसी को खातिर में नहीं लाता, चलता है, भागता है, दौड़ता है, दूसरों को भी ताने देता है, मैं इतना काम करती हूँ तुम नहीं करते. और एक वक्त आता है कि बाथरूम में जाने से पहले आधा घंटा सब्र करता है, रोक ही लूँ अपने आप को तो बेहतर है, कैसे जाऊंगी, फिर हिम्मत टूट जाएगी. जैसे बच्चे को कुछ नहीं पता होता, इसी तरह इंसान सब कुछ जानने के बाद फिर भूल जाता है, याददाश्त चली जाती है. अक्सर लोगों के दांत निकल जाते हैं फिर दोबारा उगने लग जाते हैं. कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बाल सफेद होते हैं, 100 के करीब पहुंचते तो बाल फिर काले हो जाते हैं, उनके दांत दोबारा नए उगाते हैं. बच्चे और बड़े में फर्क देख लीजिए. जैसे बच्चे अक्सर दूध ही पीते हैं तो बुढ़ापे में भी अक्सर बूढ़े दूध ही या दूध की बनी हुई कोई चीज ले लेते हैं. दोनों बड़बड़ाते रहते हैं, बात को दोहराते रहते हैं. अगर आपके घरों में कोई ऐसा बूढ़ा है, अपने लिए उसको दुआओं की पोटली बना लें. जैसे बच्चों की लाड करते हैं ना, वैसे बूढ़े माँ बाप की लाड करें, खिसाएं, खेलें, उनको कहानियां सुनाएं, उनसे उनके बचपन की बातें सुने, खिलखिलाएंगे, शर्माएंगे कभी जाके कि अम्मा सुनाओ आपकी शादी कैसे हुई थी, अम्मा वो जो बचपन में मुझे सुनाती थी वो कहानी सुनाना. हम अपने बड़ों को टाइम नहीं दे पाते, हम कहते हैं क्या आप इनको खाना तो देते हैं, दवाइयां तो ला दी हैं ना, वो और इनको क्या दें, उनको आपकी दवाइयां नहीं चाहिए. अगर बचपन में माँ बाप को बच्चे सिर्फ दवाइयां ला के दे दें या मेड्स के हाथ में डाल दें तो क्या बच्चे खुश होते. तो लिहाजा इन बूढ़ों की कदर करनी है, ये दुआओं की चीज़ है और ये हकीकत में ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के लिए खैर का जरिया बनती है. फरमाया हक यह है कि अल्लाह इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी. और देखो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क पर फजीलत दी, फिर जिन लोगों को ये फजीलत दी गई वो ऐसे नहीं कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हो ताकि दोनों इसमें बराबर हो जाएं. तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों का इनकार है. शिरकी कितनी खूबसूरत निगेशन है कि आप चाहते हैं कि आपके मुलाजिम का और आपका बैंक अकाउंट एक ही हो जाए ताकि जितनी आपकी दौलत है उसको शेयर करके आधी उसकी दे दें. तो हम तो ये नहीं चाहते. तो क्या अल्लाह ने बुजुर्गों और बुतों के नाम पे कुछ चीजें रखी हुई हैं कि तुम इनको अपनी तरफ रख लो. नहीं, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारी हम जिन्स बीवियां बनाई और उसी ने बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दी. सोचे बीवी हम जिन्स और आज हम क्या ढूंढते हैं, वो परी कहां से लाऊं जिसे दुल्हन बनाऊं. अल्लाह ने कहा एक ही जिन्स की, आप परियां ढूंढ रहे हैं, तभी तो मिलती नहीं है. तो फिर बेटा भी और बूढ़ा हो जाता है, फिर बिल्कुल ही नहीं मिलता. फिर आप यहां देखिए हफदा पोते, ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर, कितना प्यार होता है लोगों को इनसे. मैंने देखा है लोग इनका नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है. किसकी नेमत है, इंजॉय करें अपनी इन नेमतों को. अल्लाह का ये दिया हुआ सब कुछ और जो कुछ खाने को दिया तो उसके लिए तो बस इफ्तारी की टेबल ही याद कर लें. फिर क्या लोग ये सब कुछ जानते हुए और देखते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर इनको पूछते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों में से इन्हें कुछ रिस्क देना है ना जमीन से और ना ये वो काम कर सकते हैं. बस अल्लाह के लिए मिसाल लेना खड़ो. अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते. अल्लाह एक मिसाल देता है, इमेजिन कीजिएगा, शिर्क की निगेशन है. एक तो गुलाम है जो दूसरे का ममलूक है और खुद को इख्तियार नहीं रखता. दूसरा शख्स ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया, वो इसमें से खुले और छुपे खूब खर्च करता है. बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. मगर अक्सर लोग इस सीधी बात को भी नहीं जानते. मिसाल है मवाहिद और मुशरिकी. जो एक रब से मांगता है ना वो आजाद है, जो रब को छोड़ के दूसरों से मांगता है वो ऐसे ही है जैसे कोई किसी का गुलाम हो. अल्लाह एक और मिसाल देता है, दो आदमी एक गूंगा बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता, अपने आका पर बोझ बना हुआ, जिधर भी वो इसे भेजे कोई भला काम इससे बन नहीं पाता. दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है और खुद भी राह रास पर कायम है. बताओ क्या ये दोनों यक्स हैं? बिल्कुल नहीं. कोई एक ऐसा मुलाजिम हो जो सही काम करे और एक ना करे, हर एक के पास कोई ना कोई ऐसी जरूर मिसाल होगी कि उनके मुलाजमों ने बेकार काम किए हो. हमारे पास एक बूढ़ा बाबा था, बहुत ईमानदार, बहुत उसकी अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं मुझे. तो एक दफा उसको लिखा कि फलियां ले आओ 1 किलो, तो वो फुलियों का इतना बड़ा लिफाफा लेके आ गया. फुलियां पता क्या होते, वो सूखे चावल जो भुनते हैं ना भट्टी में, चावलों को उबाल के तो बोलते ना फुलियां सी, चने और फुलियां लोग खाते थे. तो इतना बड़ा लिफाफा उठा के आ गया. इसी तरह एक दफा चिकन लेने गया, जब घर आया अब उस दौर में चिकन हाथों से कटी थोड़ी साथ ही साथ लोग मंगाते थे, ऐसे ही बाबे को बता दिया कि बाबा एक टांग है मुर्गी की, उसने जो कसाब था उसने गलती से नहीं दी या क्या। बस फिर हम तो भूल गए, घंटा डेढ़ गुजरा, बाबा जी हाथ में एक टांग पकड़ के एक और मुर्गी कटा के उसकी टांग लेके हराम खाते हैं, ये करते हैं, यानी उसके जाके कसाब से वापिस एक और मुर्गी कटा के उसकी टांग लेके आया। तो इस तरह के लोग होते हैं, कई सीधे होते हैं, कई अच्छे हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल बड़े स्मार्ट होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं मोमिन स्मार्ट होता है, वो मुशरिक की तरह का नहीं होता। फिर इसी तरह आगे फरमा दिया, अल्लाह ही जमीन आसमान के छुपे हुए हकायक का इल्म रखता है, और क्यामत के बरपा होने का मामला कुछ देर न लेगा, मगर बस इतनी ही जिसमें आदमी की पलक छपक जाए। छपके जरा पलक अपनी, कितने सेकंड लगे, एक सेकंड से भी कम में पलक छपक जाता है इंसान, इस तरह अचानक क्यामत होगी, और हो सकता है वो अगली खड़ी हो, नो वन नोज, बल्कि इससे भी कुछ कम। हकीकत ये कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। इस पे 3 सेकंड तक गौर करें कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब अपनी पैदाइश को सोचिए, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ न जानते थे, इसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, और सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार हो। 3 सेकंड सोचिए, क्या वाकई सोचती हूँ? चंद बातें पूछ लें खुद से, क्या मैं कानों का सही इस्तेमाल करती हूं? क्या मैं आंखों से कोई गलत चीज तो नहीं देखती? क्या मैं, मेरा दिल सोचता है या बगैर सोचे काम करती हूं? क्या मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूं? क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की फिजा में किस तरह मुसख्खर है? अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इस पे बहुत निशानियां इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। हाईलाइट करें, घर और सुकून लाजिम मलजूम है, और जिन घरों में सुकून नहीं है ना, वहां से फिर क्रिमिनल्स पैदा होते हैं। जब तक घर में सुकून था नस्लें खूबसूरत थी, जब घर बेसुकून हुआ तो नस्लें तबाह बर्बाद हो गई। आज वेस्ट का मसला क्या आपको पता है? क्यों बच्चे इतने जल्दी ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं? क्यों जिना और गंदगी में पड़ते हैं? क्यों उनको शुरू से ही शौक आ जाता है कोई हमसे मोहब्बत करे, हम किसी से? क्योंकि घरों में वो बेचारे इग्नोर्ड होते हैं। 6-6, 7-7 दिन के बच्चों को माएं बेबी सिटर्स के पास छोड़कर जॉब्स पे जाती हैं, और वो बच्चे माओ को तरसते रहते हैं। तो घर औरत से बनता है, पैसे से नहीं बनता। इसलिए अपने घरों को पुरसकून बनाए, और घर का सुकून किस चीज में? घर साफ हो। गंदे और बिखरे हुए घर और ओवरलोडेड घर में कभी सुकून नहीं होगा। साफ सुथरा हल्का फुल्का सा घर हो आपका, कुछ अरसे फिर चेंज कर लें, और चीजें जो रखनी है वो सारी इकट्ठी रखने की बजाय बाद में कुछ महीने बाद चेंज कर लें। लेकिन अपने घरों को स्टोरेज ना बनाए कि जिसके साथ सुकून ना, फिर वो घर पुरसकून होता है जहां अल्लाह को याद किया जाए। और होम रूल्स तो आपको दिए ही गए हैं, जिनको नहीं मिले अभी बाहर से ले लें। ये घर को पुरसकून बनाने का तरीका है। लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, एक दूसरे के हकूक को समझे। फरमाइश ने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफर और क्याम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। क्या मुराद है? टेंट्स। जरा पूछिए, क्या मेरा घर इजी टू मूव है? अल्लाह कहते तुम्हारे घर मूवेबल होते, सफर में भी लेके चल पड़ते हो, जहां रुकते हो उसको खड़ा करके खोलते हो तो तुम्हारा हैमा बनता है, सफर में उसको लाद के चल पड़ते हो। क्या मेरा घर हल्का फुल्का है कि भारी है? कितने सेकंड दो सोचने के लिए, मिनट, घंटे? अगर आपको एक काम दो, अपने घर की A to Z चीजों की लिस्ट बना के लाए, अगले साल के तौर कुरान तक बन जाएगी। दे दूं ये काम ईद की छुट्टियों में? करेंगे? छोटा सा कोई कोना ले लें, कल करके लाए, नहीं चले ना से। रमजान में रोजे की हालत में आपसे काम नहीं लेते, लेकिन यकीन करें हम थक जाएंगे। वाइन तो दुनिया मत अल्लाह हिला तुखसुहा वाला हाल है हमारे घरों का। काम की चीजें तो हों, ना कारा ना रखें या एक्स्ट्रा ना रखें कि आपकी जिंदगी सिर्फ उसी के साथ गुजर चली जाए। इसने जानवरों के सूफ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीजें पैदा की जो जिंदगी की मुद्दत मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती हैं। इसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए साय का इंतजाम किया। पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनागाहें बनाई, गारें मुराद इनसे, केव्स, और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं, और कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है, शायद कि तुम फरमाबरदार बनो। पतली लॉन पहनते हैं, गर्मी से बचते हैं, कितना अल्लाह का शुक्र करते हैं। आप सोचिए कि पतले कपड़े ना होते और गर्मी होती, मोटे कपड़े ना होते और सर्दी होती, कॉन्सेप्ट ही ना होता मोटे कपड़ों का, ठुठर ठुठर के मर जाते हैं, और कोई बारीक कपड़े का कॉन्सेप्ट ना होता। और आपने देखा जो प्योर चीजों का मजा, सिंथेटिक भी अच्छा लगता है लेकिन जो प्योर कॉटन, प्योर लॉन, प्योर सिल्क पहन के आपको मजा आता है, वो आर्टिफिशियल चीजों में नहीं। किसने करा ये सब कुछ, जिसकी किताब में और आप पढ़े प्यार से इस किताब को छुए, कि जिसने सारी कायनात इतनी प्यारी बनाई, क्या फिर वो शरीयत अच्छी नहीं होगी, क्या वो किताब अच्छी नहीं बनाएगा, उसका दीन काबिले अमल नहीं होगा? नहीं, इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है, शायद कि तुम फरमाबरदार बनो। जब आप अपने आप खुद देंगे, शायद के यकीनन, क्या सोचते हैं? यकीनन इंशाल्लाह। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो नबी आप पर साफ साफ पैगाम हक पहुंचा देने के सिवा कोई और जिम्मेदारी नहीं। ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं, और इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हक मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मानते ही नहीं कि अल्लाह है, वो अल्लाह का हक अपने ऊपर लेते नहीं, वो कहते हम अपने खुदा खुद हैं। इन्हें कुछ होश भी है इस रोज क्या बनेगी, जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को ना तो हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा, ना इनसे तौबा इस्तिग़फ़ार का मुतालबा ही किया जाएगा। जालिम लोग जब एक दफा अजाब देख लेंगे तो इसके बाद ना तो इनके अजाब में कोई कमी की जाएगी और ना उन्हें एक लम्हा भर मोहलत दी जाएगी। फिर और जब ये लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे, अब इमेजिन करें सारी जिंदगी किसी और के शहर में खोए रहे, क़यामत के दिन क्या हुआ, कहेंगे ऐ परवरदिगार यही है हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस पर उनके वो माबूद इन्हें साफ जवाब देंगे कि तुम झूठे हो। इस वक्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और इनकी ये सारी झूठ बाजियां खत्म हो जाएंगी जो वो दुनिया में करते रहे। जिन लोगों ने खुद कुफर की राह इख्तियार की और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका नहीं, इन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे उस फसाद के बदले में जो वो दुनिया में बर्पा करते रहे। ए नबी, इन्हें इस दिन से खबरदार कर दो, हम सब भी सुन लें, कि जबकि हम हर उम्मत में खुद इसी के अंदर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जिसके मुकाबले में शहादत देगा, और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे, और ये इसी शहादत की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी जो हर चीज की साफ साफ वजाहत करने वाली है, और हिदायत और रहमत और बशारत इन लोगों के लिए जिन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया। अपने आप से पूछें, दूसरे पारे से ये मजमून चल रहा है, शहादत हक की गवाही 14th पारे पे पहुंचे हैं, खुद से जवाब ले, क्या इन 14 पारों तक मेरे अंदर ये एहसास बढ़ा के कम हुआ कि मैं इस दुनिया में हक को फैलाने के लिए आई? हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग वाकई अब इसको महसूस करते हैं। एक के पता चल गया हम जोश दे रहे हैं, हम बहुत शिद्दत से कर, कितनों को रियली अब ये फील होने लगा कि मैं कुछ करने के लिए भेजी गई हूं? तो मुबारक है आपको, फिर आपने इस मकसद को पा लिया है जिसके लिए रोज आके बैठते हैं। बस अब अल्लाह ताला इसके तकाजे निभवा ले हमसे। बहुत अहम आयत है ये आयत, जो उस्मान बिन मज़ून जो थे वो इस आयत को सुन के मुसलमान हुए थे। बहुत ही प्यारी है, इसके अंदर तीन बातों के करने का हुक्म है, तीन से रुकने का हुक्म है। देखिएगा, इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदलि वल एहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा, अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है। अदल किससे? अल्लाह के मामले में। कैसे? किसी को शरीक ना बनाओ। एहसान किधर? दीन की हर चीज में आसन दर्जे पे करो, अदल से अगला दर्जा है। और ईताइ ज़िल क़ुरबा के सिला रहमी, अपनों से बनो। क्या होती है सिला रहमी? वो आपको दावत पे बुलाएं तो आप भी बुला लें, वो आपको ईद का गिफ्ट दें तो आप भी दें, ये तो बराबरी है, ये तो आप सबसे करते हैं। सिला रहमी क्या है? वो रिश्तेदार जो आपसे कटे आप उनसे जुड़े, जो आपको गालियां दे आप उनको दुआएं दें, जो आपको ताने दे इल्जाम दे आप उनकी तारीफें करें, ये है सिला रहमी। आप बताएं कितने लोग सिला रहमी करना चाहते हैं? अल्लाह ने अपने रहम के साथ इसको जोड़ा हुआ है। हदीस में आता है कि सिला रहमी को अल्लाह ने रहम से जोड़ दिया, और क्यामत के दिन इस सिला रहमी की वजह से लोगों को आगे करेगा। तो रिश्तेदार बहुत बड़ी नेमत होते हैं, केयर दें, उनकी केयर करें। कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें चलती हैं, मट्टी डालें दिल में ना रखें। मैंने देखा सबसे ज्यादा हमारे दिल रिश्तेदारों से बुरे होते हैं, गैरों से हम कहते हैं प्यार मोहब्बत, अपनों की लेग पुलिंग। अपनों से बहुत प्यार करें। सिला रहमी अल्लाह की रहमत को लाती, उम्र लंबी हो जाती है, रिस्क में बरकत होती है। तो आज इस नियत से किसी एक रिश्तेदार को फोन करें, बुला लें, खाने पे बुला लें, दावत कर लें, मैसेज कर लें, और खास तौर पे उससे जो आपसे नाराज हो, जिसने आपको दुखाया हो, करके देखें। जरा सी मतलब एक थ्रेश होल्ड है, बस इसमें से निकलें, उसके बाद आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के लिए आज अपने किसी रिश्तेदार को कॉल करें जो आपसे रूठा हुआ है, या आपके और उसके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी और आप दोनों अपनी अदा में बैठे मैं के हूँ। चाहे आपके घर के हस्बैंड ही हो सकते हैं, कोई अपने करीब का भाई बहन ही हो सकता है। आज कह के मैंने इस आयत पे अमल करना है कि इताए ज़िल क़ुरबा करना है, तीन चीज़ों से रोका। किससे क्या? वयनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बगी, और बदी और बेहयाई और जुल्म व ज़्यादती से मना करता है। बदियां छोड़नी पड़ेंगी, फुहश छोड़ना पड़ेगा। फुहश क्या है? अल्लाह को नाराज करने वाले काम है, और जुल्म व ज़्यादती से रुकता है। वो क्यों? वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। हर जुमे के खुतबे में आलमोस्ट ये आयत पढ़ी जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर से इसको खुतबा जुमा में शामिल किया गया, क्योंकि इस आयत में मकसद बहुत अहम है। लेकिन आज देखिए, लगता है इस सोसाइटी को जिसमें ये आयत पढ़ी जाती है, खून के रिश्ते दुश्मन बने पड़े हैं, सगे खानदानों में कटाव पड़े हुए, और फुखश और बेहयाई की तो बात ही ना कोई करे। वाउफ़ बेअहदिल्ला, अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुमने इससे कोई अहद बांधा हो। कोई बांधा अहद आपने? मैंने सब बोले, क्या अहद है मेरा आपके अल्लाह से? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अहद है, प्लेज करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। और क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद तोड़ न डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके। अल्लाह तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है, तुम्हारी हालत उस औरत की सी न हो जाए जिसने आप ही मेहनत से सूत काटा, फिर आप ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकरो फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फायदे हासिल करे। आज दुनिया में यकीन कर लें, यूनिवर्सली यही हो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनकी अथॉरिटीज है ना, वो गरीबों का खून भी निचोड़ने को तैयार है। हालांकि अल्लाह इस अहद पैमान के जरिए से तुमको आजमाइश में डालता है, और जरूर वो क्यामत के रोज तुम्हारे तमाम इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में कोई इख्तलाफ ना हो तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखाता है, और जरूर तुमसे तुम्हारे आमाल की बाज बुरस होकर रहेगी। हाईलाइट करें, क्या मुझे यकीन है इस बात का कि मुझसे मेरे आमाल के बारे में पूछा जाएगा? फिर तो अमल ठीक हो जाए हमारे, हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।